harus dapatkan cerita-cerita kapsa mesin kakadik suara itu सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने भजन लिखा है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रार्थना में, तो आप लोग वहां नीचे इसको दोहरा सकते हैं। ओम ज्ञानपुरांदस्य ज्ञानञ्जनसदाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामिहं ददान्ति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महाबलाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवस्य नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवप्रवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सचनंदन श्री गौर हरि की जय। श्रील वासुदेव गौर की जय। तो बहुत सुंदर भजन हमने पढ़ा, इसका श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमारी जो वैष्णव आचार्यों का भजन है ये वेदों के वाक्य है, वेदों के वाक्य का भी असत्य नहीं हो सकता। उसी प्रकार हमारा वैष्णव आचार्य का जो वाक्य है वो भी असत्य नहीं हो सकता। तो बहुत ही सुंदर भजन है जिसमें कि वासुदेव घोष जी एक वैष्णव आचार्य गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इन प्रार्थनाओं को हम भक्तों को अपना आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि भजन में वासुदेव घोष जी शुद्ध हृदय से भगवान को पुकार रहे हैं। अभी हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में भक्ति करते हुए भी कहीं अनर्थों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब भक्ति करते हैं तो असली अनर्थ सामने आता है। तो भक्त को बहुत संघर्ष करना पड़ता है कि उस अनर्थ को आगे जाने के लिए। तो कई बार भक्त जो है उनका निराश हो जाता है, पता नहीं मैं क्या भक्ति को प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तब ये भजन को याद करना चाहिए हम भक्तों को, हे गौरांग महाप्रभु आप कभी भी मेरे ऊपर जो है दया मत छोड़िए, अपनी दया कभी भी मेरे ऊपर मत छोड़िए, मेरे ऊपर कभी अपनी दया को मत हटाइए, अपनी दया को भी मत हटाइए मेरे ऊपर। आपन और कलिया रंगा चरण रखियो, मुझे अपना समझ के अपने चरण कमलों में रख लीजिए। हम दोहराते रहेंगे इस पद को, अपना आत्मसात करते रहेंगे, भक्तों का आश्रय लेंगे, वासुदेव घोष जी का आश्रय लेंगे, ऐसे महान आचार्यों का आश्रय लेंगे, तो अवश्य हमें गौरांग महाप्रभु प्राप्त हो जाएंगे जो कि स्वयं राधा कृष्ण है। तो भगवान का ये गौरांग महाप्रभु का अवतार विशेष रूप से हम बद जीवों को कल्याण करने के लिए, स्वयं राधा कृष्ण जो है गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। जब भगवान कुछ देने की भाव में होते हैं, जीवन के ऊपर कृपा करने की भाव में होते हैं, तब वे गौरव महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो गौरव महाप्रभु के रूप में हम भगवान की पूरा पूरा कृपा जो है प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का जो पूरा पूरा कृपा जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये महाबदानी अवतार दानी अवतार वो देना चाहते हैं, हम मांगना चाहते हैं, लेकिन गौरव महाप्रभु देना चाहते हैं। तो ये समय बहुत ही अच्छा है, भगवान देने की मूड में भी है, हम लेने की मूड में भी है। तो बस गौरव महाप्रभु के चरण कमलों को मांगना चाहिए, उनके चरण कमलों के अलावा संसार में कोई भी सुख नहीं है। अगले पद में कहते हैं कि तुम्हारे चरण का की सब त्याग की, आपके चरण कमलों के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, सब कुछ में त्याग कर दिया संसार में। सीता का चरण में पाया शरण में लगी, मैं आपके चरण कमलों के लिए, मैंने भगवान के मुख से सुना कि अभय चरणारविंद है, आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से मैं ये संसार के भय से मुक्त हो जाऊंगा। ये संसार में हम सब लोग भयभीत हैं, हमेशा भयभीत जो है हम लोग रहते हैं, पग पग पे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा पढ़ाई अच्छा होगा कि नहीं होगा, मेरा बिजनेस अच्छा होगा कि नहीं होगा, मेरा पारिवारिक जीवन अच्छा होगा कि नहीं होगा, एक भय बना रहेगा। तो मैंने सुना कि भक्तों के मुख से कि आपके चरण कमल जो है अभय प्रदान करता है, इसलिए मैं आपके चरण कमल में आ गया हूँ। और सीता का चरण पाया स्वर्ण लगी, आपके जो कोमल चरण जो कि बहुत ही शीतल है, बहुत ही शीतल चरण है, तो मेरा जीवन में जो दावा भी लगा हुआ है उसके लिए आपके शीतल चरण ही एकमात्र औषधि है, तो इसका मैंने शरण लिया हूं। एक मिले और मिले मुही दिलू तिलांजलि, मैंने अपना सब कुछ जो भी मेरा व्यापार है, मेरा कारोबार है, मेरा मेरे पास जो भी कुछ है, मैंने सब कुछ तिलांजलि दे दिया। तिलांजलि मरने के बाद अपने पूर्वजों को तिलांजलि दिया जाता है, जल और तिल अंजलि से दिया जाता है। तो मैंने सोचा मेरे संसार में सब कुछ समाप्त हो गया है, सो मन ही मन सोचकर मैंने उनको तिलांजलि दे दिया। राखी और चरण मोरे अपना रखो, हे दयाल महाप्रभु अभी अपने चरण कमलों में मुझे रख लीजिए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सबको तिलांजलि दे दिया और कुछ रहा ही नहीं, तो अगर आप मुझे ठुकरा देंगे तो मेरा क्या अवस्था होगी, तो मुझे अपने चरण कमलों में रखिए। अपना रखो वासुदेव घोष बोले चरण धरिया, कृपा कर लाखो मरे पद छाया दिया। तो वासुदेव घोष जी भगवान का चरण कमलों का आश्रय लेकर ये प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करके आप मुझे अपने चरण कमलों में रखिए। ते गौरा महाप्रभु का जो है भजन है, वासुदेव घोष जी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो वैष्णव आचरण का गीतों को हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, तो उसी से हमें कृपा प्राप्त हो सकती है। कलयुग में भक्ति करना बहुत कठिन है, धर्म का पालन करना बहुत कठिन है, हर जगह में जो माया का प्रकोप इतनी ज्यादा है संसार में, कैसे भक्ति कर सकते हैं? बिना गौरव महाप्रभु का आश्रय लिए भक्ति हो ही नहीं सकता। तो हम संसार में बहुत ही भाग्यशाली वो व्यक्ति है जो गौरव महाप्रभु को जानता है। पूरे भारत में भगवान के मंदिरों की कमी नहीं है, भगवान के मंदिर हर जगह है, भारत बहुत ही पवित्र भूमि है, लेकिन भारत में बहुत कम लोग जो है श्री चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं, गौरव महाप्रभु को जानते हैं। अगर जो जान लिया उनको तत्व से जान लिया, तो वो व्यक्ति जो है जीवन में धन्य है, उसी व्यक्ति का जो जीवन धन्य है। तो अभी हम लोग चैतन्य चैतन्य का पाठ शुरू करेंगे। तो हम जो प्रयाग है 82 उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अरे प्रसंग को समान प्रसंग को श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस समय हमारी हम जो सुन रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राण लीलाओं को, चैतन्य महाप्रभु सातवें भट्टाचार्य को मुक्त करने के बाद चैतन्य महाप्रभु माघ के महीने में सन्यास, माघ महीने की कृष्ण पक्ष में सन्यास लेकर वो नीलाचल के पहुंचते पहुंचते उनको दौ पूर्णिमा का समय हो चुका था, फाल्गुन महीना अर्थात उनका प्राकट्य दिवस के समय हो चुका था। दौ पूर्णिमा उत्सव जो है नीलाचल क्षेत्र में मनाया गया, वहां फाल्गुन के महीनों में महाप्रभु आ चुके थे। फाल्गुन फिर फाल्गुन बीता, चैत्र बीता, बैसाख में चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई दक्षिण भारत यात्रा करने की, तो उन्होंने अपने भक्तों से सबसे सब भक्तों को बुलाकर, हमने सब सुन चुके हैं, सब भक्तों को बुलाकर पूछा कि मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ लेकिन मैं अकेले जाना चाहता हूँ। तो नित्यानंद को रोका, ऐसे कैसे आप जा सकते हो, आपको तो कुछ होश ही नहीं रहता, आपका आप जब कीर्तन करते हो आप सब कुछ भूल जाते हो, आपका कमंडलू आपका वस्त्र कौन पकड़ने वाला होगा, नहीं जाना था किसी हमें से किसी एक भक्त को लेके जा सकते हो। तो फिर नित्यानंद ने फिक्स किए ठीक है काला कृष्णदास को महाप्रभु लेके जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा करने जा रहे थे दक्षिण भारत की यात्रा, तो उन्होंने फिर जाकर सार्वभौम भट्टाचार्य से अनुमति मांग रहे थे कि मैं दक्षिण भारत भ्रमण करना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति दें। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु इस बातों को सुनकर धैर्य धारण नहीं कर पाए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि अगर मेरे सिर पर वज्र पड़ जाए, यदि मेरा पुत्र मर जाए तो तभी मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन आपका विच्छेद जो है मुझे सहन नहीं हो सकता। तो कितना कितना प्रेम था सार्वभौम भट्टाचार्य को, भट्टाचार्य का भगवान के प्रति। श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में ओडिशा में रहकर ओडिशा से धन्य थी। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहकर जगन्नाथ को वास्तविक रूप में पूरा ओडिशा क्षेत्र को जगन्नाथ ने धन्य किया, हर कोई चैतन्य महाप्रभु को ओडिशा में जानते। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर थे जगन्नाथपुरी में, कितना सुंदर उसमें वातावरण था, सभी लोगों के अंदर भक्ति भावना भरी हुई थी, सभी लोगों के राजा के अंदर भक्ति भावना है तो प्रजा के अंदर होगा ही होगा। तो एक रूप से जगन्नाथपुरी में एक क्रांति था उस समय जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर थे, एक स्वयं भगवान जगन्नाथ जी, दूसरे श्री गौरांग महाप्रभु। हमेशा जो है लोग भगवान को देखने के लिए आते थे और गौरांग महाप्रभु देखने के लिए आते थे, हमेशा यही दोनों जो है गौरांग महाप्रभु और स्वयं भगवान जगन्नाथ, यही दोनों ही जो जगन्नाथपुरी के शोभा था, तो हर दिन उनको देखने के लिए आना चाहता था, तो उनको बिल्कुल कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। तो इस प्रकार जो है उन्होंने कहा कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि मैं आपको जो है छोड़ना नहीं चाहता, मैं आपका विच्छेद को सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने पुत्रों का या मेरा प्राण भी चले जाए, मेरे घर पे वज्रपात भी हो जाए कभी मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन आपके चरण कमलों का बिना दर्शन के मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो कृपा करके आप कुछ दिन और रुक जाइए, मुझे अपने चरण कमलों का दर्शन दीजिए। तो भगवान अपने भक्तों को बात मान लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है, भगवान अपने भक्तों की बात मान लेते हैं, मानकर फिर कुछ दिन जो है नीलाचल में रहते, प्रतिदिन सड़क में लगा घर पे भोजन करते। फिर कुछ समय बीतने के बाद फिर उन्होंने अनुमति मांगा, सरदार भट्टाचार्य अब मैं जो है जाना चाहता हूँ। तब सरदार भट्टाचार्य जी बहुत ही असहनीय अवस्था में उनसे प्रार्थना करने लगे, आप तुरंत जा रहे हैं तो तुरंत आ जाइए। श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ प्रदेश बद्रा महारानी की जय। आप तुरंत ही आ जाइए, अगर आप दक्षिण भारत यात्रा में जा रहे हैं तो आपके लिए आप एक भक्त से वहां से मिलिए, रामानंद राय जी से मिलिए। और ये जो है आप जब उनसे मिलेंगे तो वास्तविक में आप उनको पहचान लेंगे, वो जो बहुत ही वो किस कोटि का भक्त है, उसके अंदर क्या भावनाएं चलती है, किस प्रकार से राज्य कर रहे हैं, राज्यपाल का पद भी संभाल रहे हैं। आप उनसे मिलेंगे तभी आपको पता चलेगा। और जैसे आप जैसे रसिक भक्तों के लिए तो आपसे रसिक भक्तों के लिए रामानंद राय जी बहुत ही उचित है उनसे आपसे मिलना, तो आप उनसे जरूर मिलिए। ये कहकर फिर जो है श्री चैतन्य महाप्रभु अंतिम विदाई मांगने लगे, ठीक है आप अपने घर पर रहिए और कृष्ण का भक्ति कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं दक्षिण भारत भ्रमण करके मैं तुरंत नीलाचल में आ जाऊं। भगवान इस तरह से मुझे प्रार्थना की। इसके जैसे जाने लगे तो सरवण भट्टाचार्य जी जो है तुरंत उस समय भगवान के विच्छेद से वो तुरंत मूर्छित हो गए। तो तुरंत मूर्छित होने पर उसने तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप अभी बाकी भक्तों ने कहा कि आप अभी जो है इनको लेकर सावन भट्टाचार्य अपने घर लेकर चले जाइए। इतना कहकर इतना यहाँ तक जो हमारा पिछला समाप्त हुआ था 71 प्रयाग नंबर में समाप्त हुआ था, 72 से 82 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, महानुभव रचित स्वभाव ही है पुष्प सम कोमल कठिन वज्रमय। महानुभवों के मन में मन का ऐसा ही स्वभाव होता है, महान अनुभवी लोगों का मन में ऐसा ही स्वभाव होता है। कभी कभी ये फूलों से गति कोमल हो जाते हैं, कभी कभी वज्र से भी जो है अधिक कठोर हो जाते हैं। तो ये जो है महानुभवों का ऐसा स्वभाव होता है। कभी भक्तों की बात भगवान मान रहे हैं यहाँ पर, और कभी नहीं भी मान रहे। तो इसी प्रकार जो है श्री गौरांग महाप्रभु की लीला में दिखता है कि भगवान कैसे कठोर भी हो जाते हैं, कैसे कोमल भी हो जाते हैं। बाहर से कठोरता व्यक्त करते हैं लेकिन अंदर से जो है कोमल ही रहते हैं। ये भगवान का और भगवान के शुभ भक्तों का ऐसा ही स्वभाव होता है। क्योंकि भगवान का भक्ति करने वाले व्यक्ति के अंदर सारे भगवान का दिव्य गुण जो है प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए भक्त के अंदर भी जो भगवान के गुण जो है विकसित होने लगता है। तो इस प्रकार से एक लीला है चैतन्य चरितमृत में ही अंत लीला में, जब महाप्रभु वृंदावन भ्रमण करके आने के उपरांत नीलाचल क्षेत्र में थे तो एक दिन सभी भक्तों ने जाकर चैतन्य महाप्रभु से शिकायत करने लगे कि महाप्रभु आपका एक भक्त गोपीनाथ पटनायक रामानंद राय के भाई थे, गोपीनाथ पटनायक अभी भी ओडिशा का जो राजा है वो पटनायक ही है। तो उस समय चले आ रहा है रामानंद राय के पटनायक से समय चले आ रहा है, उसी समय से समय चले आ रहा है। तो पहले भी पटनायक ही था, अभी जो है पटनायक ही है, वहां का जो मुख्यमंत्री है। तो तो रामानंद राय जी राज्यपाल थे, तो उनका भाई गोपीनाथ भी जो है वो भी एक राज्यपाल ही थे। कुछ एरियाओं का वो जो है कर एकत्रित करके महाराजा प्रताप रुद्र को देने लगते थे, उनका ये कार्य था, राज्यपाल थे। तो कुछ भक्तों ने आकर चैतन्य महाप्रभु से शिकायत करने लगे कि गोपीनाथ पटनायक को आज उनके राज, उनके जो राजा लोग थे, राजकुमार जो उनको चांदा पे चढ़ा दिया, अर्थात उनको उनका वध करना चाहता है। चांदा मिनसे की एक स्थान है, वहां पे खड़ा करके उसके बाद पूरा तेज तलवार जो है बिछा हुआ होगा, उसके ऊपर उनको धकेल दिया जाएगा, तो उसमें कट के जो है व्यक्ति मर जाता, उसको उसको जो है चांदा बोलते, चांदा पंजाबी वर्ड नहीं है, बंगाली वर्ड है। तो इसे बध होने के लिए पंजाबी वर्ड थोड़ा विकसित है, चंगा है, बड़ा ठीक है, लेकिन वह बध की ही वो बध वाली बात किया जा रहा है, तो उसको चढ़ा दिया गया। तो चैतन्य महाप्रभु इस बात को सुनकर चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले कि वाणीनाथ का क्या दोष, गोपीनाथ पटने क्या दोष था कि इन्होंने कुछ जो कर जो है उनको दे नहीं पाए, कुछ कर दे नहीं पाने, नहीं दे पाने के कारण, अर्थात कर में कुछ खर्चा हो चुका था, उनको हिसाब नहीं मिला, तो वो राजा को पूरा कर दे नहीं पाए, 2 लाख जो है कर दे नहीं पाए। तो गोपीनाथ पटनायक ने कहा ठीक है, आप इसके बदले मेरे घोड़ा ले लीजिएगा और बाकी जो कुछ जो पैसा होगा मैं बाद में आपको दे दूंगा। तो इस पर जो है राजा को ऐसे हिसाब दिया गोपीनाथ पटनायक ने, तो राजा ने कहा ठीक है, तो अपने पुत्र है उसका नाम पुरुषोत्तम जेना, पुरुषोत्तम जेना उसका नाम था, अर्थात राजकुमार पुरुषोत्तम, उसको कहा कि ठीक है आप इनसे घोड़ा उचित मूल्य से ले लीजिएगा। तो क्योंकि वो सौदा करने में बड़ा एक्सपर्ट था घोड़ा खरीदने में, महाराजा प्रताप रुद्र का बेटा, तो प्रताप रुद्र ने पुरुषोत्तम जो उनके राजकुमार ने जाके घोड़ा उनसे मूल्य करने लगे, तो मूल्य में उन्होंने रेट कमती बढ़ती कर रहे थे, तो गोपीनाथ पटनायक अच्छा नहीं लगा, उन्होंने किसी का डर भी नहीं था क्योंकि राजा से तो उनका अच्छे संबंध था, तो किसी का डर ही नहीं है कि राजा की दृष्टि से गलत व्यक्ति है ये, तो किसी का डर है, पूरा परिवार जो है उनके परिवार जो है परिवार वालों से महाराजा प्रताप रुद्र प्रेम करते। तो उन्होंने कहा लेकिन उस राजकुमार का जो स्वभाव था, वो जब भी बात कर रहा था गर्दन ऊपर उठा के, गर्दन घुमा के, कभी नीचे करके, आमने सामने करके बात नहीं करता था। तो गोपीनाथ पटनायक ने मजाक से कहा कि देखो मेरा घोड़े का जो ये रेट है, तो उन्होंने कहा नहीं ये रेट है। तो गोपीनाथ पटनायक कहा मेरा घोड़ा गर्दन घुमा के बात नहीं करता गर्दन बात नहीं करता, तो मैं सब क्यों कम रेट में दूं। तो इससे उस राजकुमार को बड़ा बुरा लगा, तो उसने उनसे बदला लेने के लिए प्रताप रुद्र महाराज से कहा कि अगर आप आदेश करो तो मैं उनको कुछ डरा धमका के उनसे पैसा वसूल करूं। महाराज ने प्रताप रुद्र महाराज ने कहा ठीक है ले लो, जैसे भी करना ले, जैसे भी लेना है राजधन ले ही लो। तो इस पर उन्होंने इस प्रकार जो गोपीनाथ आचार्य को चांदा में चला दिया। तो ये खबर चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचा, तो चैतन्य महाप्रभु जो है सुने अब कुछ नहीं बोले, बोले बहुत ही अच्छा हुआ। देखिए रामानंद राय का भाई, अपना निजी भाई है, उसको जो है मृत्युदंड दिया जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे कुछ भी नहीं कर रहे। चैतन्य महाप्रभु चाहते आदेश देते राजा को, तो राजा तुरंत रुक जाता, लेकिन जो है वो चुप ही रहते, बहुत ही अच्छा हुआ है और दंड जो है मिलना ही चाहिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस समय थोड़ी देर बाद स्वरूप दामोदर भी आते हैं, भगवान को बहुत प्रार्थना करते हैं, दयामयी भगवान आप कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए, अभी जो है ये जो रामानंद राय का सारा परिवार जो है आपका आपका सेवक है, और उनको मृत्युदंड दिया जा रहा है, उनके ऊपर उनकी जो उनके ऊपर जो है अच्छी समय समय चल नहीं रहा, तब उनकी रक्षा कीजिए। तब भी जो है महाप्रभु ने चुप हो कुछ नहीं बोले। महाप्रभु ने कहा मुझे डिस्टर्ब करोगे तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा। सब चुप हो गए। थोड़ी देर बाद और एक भक्त आता है, महाप्रभु शिकायत करता है अभी जो है बारीनाथ को, रामानंद राय का पिता को पूरा परिवार को बंदी बना दिया गया। तो तभी महाप्रभु जो है चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहे। तो बाद महाप्रभु ने कहा कि तुम लोग जाके भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना करो, वही कुछ कर सकते, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम क्या चाहते हो मैं सन्यासी होकर मैं जाके राजा के सामने अपना अपना वस्त्र फैला तुमसे भिक्षा मांगू, 2 लाख रुपया मांगू उनसे? ये मेरे क्या कोई सन्यासी के लिए सन्यासी का धर्म है? तो इस प्रकार जो बहुत कठोर व्यवहार करने लगे। तो बाद में जो राजा का मंत्री हरिचंदन ने जाके सारा डिटेल्स पता किया, तो ऐसे ही बेकार में जो है राजकुमार उनको परेशान कर रहा था। तो बाद में उनको जो है उतारा गया वहां से गोपीनाथ पटनायक को। तब जो भगवान चैतन्य महाप्रभु अप्रत्यक्ष रूप से कैसे कृपा करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे कि बहुत कठोर हूं। अप्रत्यक्ष रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे कि भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कैसे कृपा कर रहे हैं। तो गौरव महाप्रभु ने फिर काशी मिश्र जी को कहा कि मैं यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, लोग आके मुझे परेशान कर रहे हैं, अगर वो राग धन को छीना है तो उसको दंड मिल रहा है, उसमें क्या कर सकता हूँ? लोग मुझे इस प्रकार से कहने के कारण मेरे पास बार बार शिकायत लेकर आते हैं और मैं ठीक से जो है यहाँ पे मुझे रहना बहुत कठिन हो गया, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो काशी मिश्र ने बनाया, नहीं 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 ऐसे मत कीजिए, आप यहाँ ही रहिए और ऐसे जो है ऐसे आगे से नहीं होगा, कहकर काशी मिश्र चले गए। तो महाराजा प्रताप मित्र को पूरा उनका जो समय था शेड्यूल था वो प्रतिदिन आकर अपने गुरु के चरण की सेवा किया करते थे प्रतिदिन। जब तक वो उस क्षेत्र में होते थे तो उस समय उनके गुरु का जरूर चरण सेवा करने के लिए आते। जब शिष्य गुरु के चरण कमलों का सेवा करने के लिए जाता है तो उस समय जो गुरु और शिष्य का जो संबंध बनता है तो उस समय अगर गुरु कुछ कहना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि सेवा की भावना से शिष्य भी है और कुछ गुरु को आदेश देना चाहते हैं तो गुरु उस समय आदेश दे भी सकते हैं। तो उस समय काशी मिश्र ने पूछा महाराज प्रताप रुद्र को कि गौरव महाप्रभु यहाँ से जाना चाहते हैं, यहाँ बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपने वाणीनाथ को जो कष्ट दे रहे थे इसके कारण हुआ। तो उन्हें कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा ये सब। उसने जब किसी प्रकार से बात को जो समाप्त किए प्रताप रुद्र महाराज ने, तो प्रताप रुद्र महाराज ने बात समाप्त करके फिर जाकर गोपीनाथ पटनायक को बुलाया, उनको कहा तुम्हारे पास अगर धन नहीं है तो मुझे क्यों नहीं बताया, कोई बात क्यों नहीं बताया? तो नहीं तो तुम्हें जो है तुम बाद में पैसा मुझे वसूल कर देते, अगर तुम पैसा खर्चा थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तुम्हारा तनख्वाह कम है, लो मैं तुम्हारा तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। तो डबल तनख्वाह भी कर दिए और ये राज्य का कर वसूल करने का उनको अधिकारी बना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कहां उनका प्राण लिया जा रहा था और कहां गौरव महाप्रभु कृपा से उनको धन धन में और वृद्धि होगी। धन के अभाव के कारण उनके प्राण लिया जा रहा था। अब देखो राजा और कई राज्यों का अधिकारी बन गए और जो उनकी धन भी बढ़ गया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो यही है एक महानुभावों का स्वभाव। ये हमने कह रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु गुणगान में कह रहे, यहाँ पर जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे कि महानुभावों का ये स्वभाव होता है कि बाहर से कठोर दिखते हैं लेकिन कभी कठोर बनते हैं कभी कोमल बनते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का ये लीला है। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं वज्रदपि कठोरीणा मृदुना कुसुमादपि
लोक लोकाकरण चिंतन सी कौन विज्ञान ईश्वर।
सामान्य व्यक्ति से ऊंची व्यवहार वालों के हृदय कभी वज्र से भी अधिक कठोर होता है तो कभी फूलों से भी अधिक कोमल हो जाता है। जो उच्च विचार वाले व्यक्ति का अर्थात भगवत भक्तों का, जो महानुभावों का ऐसा स्वभाव हो जाता है। महापुरुषों में ऐसा विरोधाभास को समझने में कौन समर्थ है? कौन समर्थ है कि चैतन्य महापुरुष के हृदय की बात को समझने में कौन समर्थ है? नित्यानंद प्रभु भट्टाचार्य पठाइल तारे लोके संगे तारे घरे पठाइल। तो नित्यानंद प्रभु ने सारंग भट्टाचार्य को अपने घर भेज दिए, उनके घर जो है कुछ लोगों के साथ भेज दिए। भक्त गणेश ग्रहसी ले लो प्रभु स्थाने वस्त्र प्रसाद लया तबे आई लो गोपीनाथ। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा को जाने लगे। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा बहुत ही अच्छे ढंग से, बड़ा अच्छा का रूट है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत की यात्रा किए वो नीलाचल क्षेत्र से अलारनाथ के रास्ते से आए। तो इसमें जो है अलारनाथ आए, अलारनाथ के बाद वहां पे उसका चिलिका पड़ता है, उसको आप लोग चिलिका लेक के नाम से जानते हैं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मपुर भी गए थे। जब हम ब्रह्मपुर गए थे उड़ीसा में तो कहा गया था यहाँ पे एक निम्बपड़ा नामक गांव है, यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए हुए थे, इसीलिए उसका निम्बपड़ा सा गांव का निमाई के नाम से वो गांव का नाम पड़ा। फिर वहां से चैतन्य महाप्रभु सीकाकुलम गए, सीकाकुलम से विशाखापट्टनम और सिंघाचलम से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से अहोबिलम होते हुए तिरुपति होते हुए रामेश्वरम श्रीरंगम, ये सब जगह महाप्रभु का भ्रमण सिद्ध रहा। तो ये चैतन्य महाप्रभु रूट था। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के निकल रहे तो वहां पर अलानाथ पहुंचे। तो अलानाथ पहुंचकर क्या हुआ? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते भक्त गणेश ग्रहसी ले लो प्रभु स्थाने वस्त्र प्रसाद लया तबे आई लो गोपीनाथ। तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों को लेकर अलानाथ जो है वो जाने लगे। उसी समय गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु के लिए कुछ वस्त्र लेकर वहां पे आ गए। सब संगे प्रभु तबे अलानाथ आइल नमस्कार करी तर बहुस्तुति केल। तो अलानाथ पहुंचकर भगवान को बहुत प्रकार से स्तुति किए, बहुत प्रकार की प्रार्थना किए। प्रेम से क्षण देखिए आई लहा जन। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम भाव से कभी नृत्य करते थे, कभी गाने लगते थे, इस तरह कुछ समय चले बीता। तो उसको देखने के लिए आसपास के जितने भी लोग हैं ये सब लोग जो है वहां पर आ गए, वहां पर जाए। चैती कहते समय लोगे बोले हरि हरि प्रेम बसे मध्य नृत्य करे गौर हरि। चारों को लोग घेर कर सब लोग हरि 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 का जो है उच्चारण कर रहे थे और प्रेम भाव से प्रेम बसे प्रेम मध्य नृत्य करे गौर। तो प्रेम उन्मद अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु बीच में नृत्य कर रहे हैं, चारों तरफ लोग घेर कर हरि हरि का उच्चारण कर रहे हैं। कांचन सदृश देह अरुण वसन पुल काशु कंप से भूषण। तो चैतन्य महाप्रभु का कैसा रूप था उस समय कि उस समय जो चैतन्य महाप्रभु पिघले हुए सोने के समान उनका शारीरिक कांति था और बीच में नृत्य कर रहे थे। अरुण वसन, अरुण वस्त्र धारण किए हुए थे, अर्थात केसरिया वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके शरीर में पुलकाश्रु था, शरीर पुलकित हो रहा था, अश्रु बह रही थी, शरीर में कंपन हो रहा था। ये भगवान का शरीर का भूषण था, ये शरीर का भूषण था। तो ये भगवान का शरीर का भूषण। तो गौरव महापुरुष सारे जगत में लोगों को था, लोगों को प्रचार कैसे किए, इसके इस भूषण के द्वारा। ये उनके पास अस्त्र शस्त्र था, पुलकाश्रु कंपन स्वेद और कंपन। इसके इसी तरह देखते लोग चैतन्य महाप्रभु देखकर लोग भक्त बन जाते थे। देखिया लो करमन हे लो चमत्कार, ये ते लोग को ऐसे के हो नहीं आया भर। तो ये सब चीज देखकर लोगों को जो बहुत चमक, लोग जो है सब चमत्कार होने लगे। अब कोई भी अपना घर जो है जाना नहीं चाह रहा था। केवल नाचे हो गया है श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमते भाषिल लोको श्री उद्धव बाबा। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम की जो बनिया लेकर आए थे, तो सभी लोग जितने भी लोग गौरांग महाप्रभु का दर्शन किए, इसलिए ओडिशा को गौरांग महाप्रभु धन्य किया। सब लोग कृष्ण प्रेम में जो है आनिची प्रेम और बनिया भाषा ही लोग प्रेम की जो बनिया पार ले आए, तब पूरा जो है पृथ्वी को जो उन्होंने प्रेम की बनिया में बाढ़ आ गया, प्रेम की बाढ़ आ गया। तो कोई भी उसको देखकर कोई भी जाना नहीं चाह रहा था, और हर कोई जो है कोई नाचता था, कोई गाता था, कोई हे कृष्ण हे गोपाल इस पर कहकर सभी लोग, स्त्री वृद्ध लोग और बालक लोग, तो सभी लोग जो वहां पे एकत्रित थे, कोई अपना घर में जाना नहीं चाहता, और सब लोग जो है प्रेम की बनिया में बह रहे थे। तो इस प्रकार जो है कृष्ण कविराज गोस्वामी जो कह रहे हैं, अभी जो है 82 प्रयास संख्या है, तो आप लोग इसको हमेशा इसको उच्चारण कीजिए। ये वास्तव में ये जो प्रयास है, ये नितंब का भविष्यवाणी, नितंब भविष्यवाणी कर रहा है। आज जो हरे कृष्ण आंदोलन का जो विस्तार हुआ है, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी, नितंब का भविष्यवाणी था। तो हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसमें बड़ा अच्छा स्वस्थ रूप से प्रोपा तात्पर्य में सब कुछ बता भी रहे हैं, हम सुनेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बोलिए, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त बने, नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, एहि रूप नित्य आगे हे गोदामे ग्रामे, एहि रूप नित्य आगे हे गोदामे ग्रामे। देखि नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, नित्यानंद प्रभु कहे भक्त बने, एहि रूप नित्य आगे हे गोदामे ग्रामे। एहि रूप नित्य आगे हे गोदामे ग्रामे, देखि नित्यानंद प्रभु कहे भक्त बने, मेरे पीछे इसका अनुवाद करो, अनुवाद बोलिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन तथा नृत्य को देखकर नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर गांव गांव में ऐसा नृत्य तथा कीर्तन होगा। तात्पर्य रूपा के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, ध्यान से सुनिए श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की यह भविष्यवाणी ना केवल भारत पर अपितु सारे विश्व पर लागू होती है। उनकी कृपा से अब ऐसा ही हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मिल संघ के सदस्य अब पाश्चात्य देश में गांव गांव में ऐसा कर रहे हैं और अपने साथ अर्चा पुत्र भी लिए रहते हैं। ये सारे भक्त विश्व में विविध पुस्तक वितरण करते हैं। हमें आशा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने वाले ये भक्त गंभीरता पूर्वक एवं दृढ़ता के साथ उनका अनुसरण करेंगे। यदि वे नियमों का पालन करें और नित्य सवामाला का जप करें तो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करने का उनको प्रयत्न अवश्य ही उनका प्रयत्न अवश्य ही सफल हो। तो प्रभुपाद जी कह रहे अगर हम भक्तियों सोलामाला का जप करेंगे, नियमित रूप से सोलामाला का जप करेंगे तो अवश्य चैतन्य महाप्रभु का ये जो संप्रदाय प्रचार करने का जो प्रयत्न है, हमारा जो प्रयास है प्रचार करने का, अवश्य ही सफल होगा, अवश्य ही सफल होगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इस बात को स्वयं भगवान नित्यानंद प्रभु ने यह भविष्यवाणी की। जब गौरांग महापुर का अलाहाबाद में वो कीर्तन को देखे, वो नृत्य को देखे तो उन्होंने भविष्यवाणी किए कि ऐसा ही नृत्य ऐसा ही कीर्तन सारे विश्व भर में होगा। और श्री नित्यानंद प्रभु कृपा से, श्री चैतन्य महापुर कृपा से उन्हीं के परंपरा में, उन्हीं के संप्रदाय में, उन्हीं के भक्त, उनके अज्ञान भक्त श्रील प्रभुपाद जी ने आए और चैतन्य महाप्रभु को ये वाणी को आगे प्रचार की। तो चैतन्य श्रील प्रभुपाद भी देखिए कितने दक्ष भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु जब इस हरे कृष्ण मूवमेंट का विजय प्रदेश में स्थापना किए उसके बाद प्रभुपाद जी का ये कितना बड़ा कार्य था। उसके प्रभुपाद जी विदेशी लोगों को लेकर आए हम लोगों का आंख खोलने के लिए, हमें जगाने के लिए, वो विदेशी पाश्चात्य लोगों को लेकर आए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पहले के पहले एक ही कार्य करते, बस तुम लोग जाओ और रोड पे जाकर कीर्तन करो। विदेश में तो रोड पे कीर्तन करना असंभव है, कठिन होती है, लेकिन भारत में किसी भी चीज का अभाव नहीं है। असल प्रभुपाद भारत के एक साधु थे, उनको पता था कि किस प्रकार से करना चाहिए। उनका पूरा विश्वास भगवान, उनका पूरा विश्वास था। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने वो पाश्चात्य लोगों को लेकर आकर वो हर जगह जो कीर्तन जो है निकाला करते थे। बड़े बड़े प्रोग्राम होता था, प्रोग्राम का आयोजन करते थे, शोभा यात्रा का आयोजन करते थे। तो हर जगह जब देखते थे जो लंबे लंबे पूरे सन्यासी होकर बड़े उत्साह से कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। तब जो है भारत में जो इस चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन का जो है और विस्तार होने लगा। तो ये जो है नित्यानंद प्रभु का देन है और इसी प्रकार का कीर्तन है। आज भगवान की कृपा से सभी गांव में, सभी नगरों में, हर जगह जाइए आपको इस गांव के भक्त मिलेंगे, आपको इस गांव के भक्त अवश्य मिलेंगे। किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए। अभी हम कुंभ मेला में थे पिछले वर्ष, तो वहां कुछ जो नागा सन्यासी है उनके पास जो है प्रभुपाद का फोटो था। और फिर हम जाकर देखे तो वो हमें देखा, हमारा वेलकम किया, कभी पूछे कि आप कौन है, कैसे है, तो मैं सारा सारा अपनी हिस्ट्री बताया। तो उसने भी कहा कि मैं जो है अभी भी मैं यहाँ पर, मैं पहले जो है इस कॉम में था, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे मुझे किसी गद्दी मिल गया, लेकिन यहाँ भी मेरा प्रोसेशन चल रहा है, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, हरे कृष्ण प्रणाम मंत्र, भगवद गीता पढ़ना। तो हर संप्रदाय में जो है ये चैतन्य महाप्रभु का वाणी, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है प्रवेश करेगा, और हर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेगा। यही युग धर्म है, चैतन्य महाप्रभु ने देने के लिए आए। और भगवान की व्यवस्था है कि किस प्रकार कहा था कि महामंत्र किस विधि से पहुंचाना है, तो ये भगवान का अरेंजमेंट है, अब भगवान इसको जो है करते हैं। तो इस प्रकार जो है नितंब भविष्यवाणी जो है पूरा पूरा हो रही है, और आने वाले 10,000 सालों में ये और विस्तार रूप से लेगा। ये कलयुग में भी सत्युग का स्थापना होगा, ये कलयुग में भी जो सत्युग की स्थापना होने वाला है, और ये अवश्य होगा, ये बहुत शुभ भक्तों का जो है वचन है, तो अवश्य पूरा होगा। तो इस प्रकार जो है ये जो नितंब प्रभु जो कह रहे कि हर गांव में नगर में इस प्रकार से नृत्य और कीर्तन होगा, लेकिन हमें ये अगर कीर्तन हो रहा है, नृत्य भी हो रहा है, लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक विधि विधान से उस भाव से करेंगे, उस भाव से हम बहुत कम लोग करते हैं कीर्तन, उस भाव से नृत्य हम बहुत कम लोग करते हैं। तो उस भाव से करेंगे, जैसे हम लोग जैसे नृत्य करते हैं, नीता तो ऐसे तो नृत्य करने गौरा मार ऐसे तो नृत्य करते नहीं होंगे, ऐसे तो नहीं करते, उसका सब विधि विधान है। ऐसे ओडिशा और बंगाल में कीर्तन की विधि है, नृत्य का विधि है, तो उसी विधि से महाप्रभु तो पूरा सदाचार के अनुसार ही कीर्तन कर रहे थे, तो उसी विधि से करेंगे तो हम जो हम भी जो जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। हरे कृष्ण। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रीताय गौर सुंदर की, श्री कृष्णदास प्रजापति स्वामी की, पिताय गौर कृपानंद।